ज्ञाननिजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूतरिदं तवै वास्मि नजीवां तया विना इति वेद्याय राधे तं नयमां शरणं। प्रथम में अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद सतर सत्मद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी को श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। पश्चात उपस्थित त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवीगण सज्जन मंडल हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, विशेष करके दशम स्कंद की कथाओं का सार आप लोगों को सरल सहज बोधगम्य भाषा में बतला रहे हैं। कल नंद यशोदा जी के वात्सल्य के संबंध में दाम बंधन लीला का भी वर्णन किया गया। इसको देख करके सुखदेव गोस्वामी जी अथवा कृष्ण द्वैपायन व्यास कर रहे हैं, नंदा किम अकरोत ब्रह्मण सेवा एव महोदय यशोदा च महाभागव भागो अपौजस्य स्तनम हरि। नंद बाबा ने क्या कर्म ऐसे किए थे, सत्कर्म, कौन से यज्ञों का अनुष्ठान किया था जो परब्रह्म कृष्ण उनके घर में जन्मे, पुत्र के रूप में जन्मे और बाल्य लीलाएं आस्वादन करने का उनका सौभाग्य हुआ और माता यशोदा जी ने भी वो महाभागा महाभाग्यवान सौभाग्यवान उन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया जो मैया यशोदा का स्तनपान करने आए, पुत्र रूप में उनके स्तन का पान किया और मैया किस प्रकार से उस प्रभु का लालन पालन कर रही है साधारण एक बालक के समान। हाँ, यह समझ रखिए, यशोदा जी ने नंद बाबा ने कोई कर्म के द्वारा यज्ञ अथवा कोई कुछ करने के द्वारा कृष्ण को पुत्र के रूप में लाभ नहीं किया है, वो तो उनके जन्म जन्मांतर के नित्य माता पिता हैं, बल्कि कोई कोई जीव जैसे द्रोण और धरा, इन लोग ने द्रोण नामक एक पशु थे, धरा नामक एक उनकी पत्नी थी, उन्होंने कठोर तपस्या और साधन भजन किया और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तुम्हारे घर में श्री हरि आएंगे और तुम लोग उनकी सेवा करेंगे। तो जब कृष्ण लीला प्रकट हुई तो ये दोनों नंद और यशोदा में मिल गए और मिलकर के रसास्वादन किया वात्सल्य रस का। ऐसा न समझो कि द्रोण और धरा ही नंद और यशोदा हुए, ऐसा नहीं। कोई भी जीव तत्व नंद और यशोदा नहीं हो सकते। नंद और यशोदा जी जीव तत्व नहीं है, इसको खूब अच्छी तरह से समझो, जीव तत्व नहीं है। सिद्धांत सुबल मधुमंगल ये सब जीव तत्व नहीं है, गोपियां जीव तत्व नहीं है, साधनचरी जो गोपियां हैं वो जीव तत्व हो सकती। साधन से सखा हुए जीव वो तो जीव तत्व हो सकते हैं, किंतु सिद्धाम इत्यादि जितने हैं, नंद यशोदा हैं, ललिता विशाखा इत्यादि गोपियां हैं, ये सब अप्राकृत चिन्मय सच्चिदानंद तत्व हैं। कहीं कृष्ण के काय व्यू, कहीं राधिका के काय व्यू स्वरूप, अथवा कहीं बलदेव जी के काय व्यू कहे जा सकते। इसलिए कोई तपस्या से कोई नंद बाबा हो जाएगा ये सब होने, उन्हीं के अनुगत्य में वात्सल्य रस से पड़ोसी बनकर उनके घर में वात्सल्य रस से सेवा करना। तो इसको कल हम लोगों ने बतलाया। ब्रह्मा जी ने देखा कि अघासुर अपने कृष्ण के अपने मुख में कृष्ण को, सखाओं को और बछड़ों सबको निगल गया, किंतु कृष्ण उसके मुख में जब गए तो उसके तालू में लग गए और उसका श्वास रंध्र यहां बंद हो गया। तो ब्रह्मरंध्र रंध्र से कृष्ण निकले और ये अघासुर उसके प्राण निकले और तेज बन करके कृष्ण के चरणों में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार से उसकी गति हुई, जो बड़े बड़े मुनियों को और बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को भी यह गति नहीं मिलती। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो भगवान स्वयं हैं, लीला कर रहे हैं, अब अच्छा मौका है ये इनकी कोई और लीला देखूं। इसलिए उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा जे ऐसा करूं जैसे ये देखते हैं ये क्या करते हैं, मैं बछड़ों को हर लूं और सखाओं को हर कर एक कंदरे में बंद कर दूं और देखते हैं ये क्या करते हैं। ऐसा मत समझना कि परीक्षा लेने के लिए, नहीं, परीक्षा में पहले ही हो गई है, उनकी लीलाओं को देखा, अघासुर का तेज उन्हें मिलकर के एक हो गया ऊपर से, तो इसलिए उनकी लीला को देखने के लिए उन्होंने इच्छा की और सोचा जब बछड़ों को चुरा लूं और सखाओं को चुरा लूं तो देखिए ये क्या करते हैं। किंतु एक बात इसमें घटी, बिना कृष्ण की इच्छा से कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण ने एक साथ 10-5 कामों को करने के लिए भी अवतरित होते हैं। उन्होंने देखा बहुत दिनों से ये गोपियां हमारे लिए विरह में तड़प रही हैं मिलने के, इसे मिलना उचित है, और भी कुछ लीलाएं करनी है, इसलिए जोग माया को ब्रह्मा जी के ऊपर में छोड़ दिया। जिसने आकर के उनमें ये पैदा किया इच्छा जे कृष्ण की कुछ लीलाओं को देखूं और गये बछड़ों को और सखाओं को चोरी करके रख दूं तो ये क्या करते हैं। किंतु यह मूल में इच्छा किसकी हुई, कृष्ण की। उन्होंने जोग माया को भेद करके उनके अंदर में यह प्रेरणा दी करने के लिए। भगवान की लीलाएं ऐसे ही अपरंपार और अबोध गम्य होती, बोध गम्य नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा जो मैंने ही ऐसा किया, अब इनको बछड़ों को हारू। जब कृष्ण खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, कैसे बीच में कृष्ण बैठे हैं और उसके बाद में दाम सिद्धाम मधुमंगल सुबल कोकिल भृंग बसंत इत्यादि सखा, एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा, ऐसे करते हुए बहुत दूर तक लाखों सखा लोग बैठ गए। अपने घरों से कुछ कुछ छीके में उनकी मैया ने भेज दिया था बैठ करके खाने में। कृष्ण ने कहा कि मैं खिलाऊंगा, कृष्ण परोसने भी लग गए। गाय या बछड़े, बछड़े थे ना गाय थी, वो चरते हुए कुछ आगे बढ़ गए। कृष्ण को छोड़कर के कभी नहीं जाते, आज हरी हरी घासों को देख करके वो आगे बढ़ते गए। और कृष्ण ने देखा कि ये गायें किधर गई या बछड़े किधर गए, सखालु उद्विग्न हो गए, यही तो हमारा धरोहर है, हमारा गोधन ही धन है, ये कहाँ गया। कृष्ण कहा तुम लोग ठहरो, मैं अभी लाता हूं खोज करके। इधर कृष्ण हाथ में दधि और अन्न का कवल, टेटी का अचार और सब चीजों को लेकर के खा रहे थे। उसी अवस्था में लोगों को बैठा करके जो तुम लोग खाओ मैं अभी आ रहा हूं, निकल पड़े। बच्चनों को इधर उधर ढूंढा, कृष्ण को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो जानते हैं ये कहां है, उनके लिए क्या छिपा है, कहीं नहीं कोई। किंतु जोग माया ने लीला करने के लिए जो लीला करेंगे, ये सब कुछ उनकी अंतर्जामिता भुला करके मुग्धता वहां पर ला दी। कृष्ण समझ में नहीं आया जी कहां गए, इधर उधर ढोड़ते ढोड़ते मुख सूख गया ना? और वो ना मिले। फिर वहां आए तो देखा जी थे ये तो सखा लोग भी मेरे कर नहीं है, तो कहां गए। इतने में ब्रह्मा जी ने उन सखाओं को लेकर के एक कंदरे में बंद कर दिया। अब कृष्ण देखा जी बछड़े भी नहीं, सखा लोग भी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ में एक सेकंड के अंतर जितने बछड़े कोटि कोटि और कोटि कोटि सखा सबका रूप धारण स्वयं कर लिया और अपने कृष्ण रूप में रहे। और उस दिन की लीला समाप्त कर घर गए, और फिर समाप्त करके घर मैयाओं से मिले, मैयाओं का स्तन किया और बछड़े अपने अपने मैयाओं का दूध पिया, जैसे लीला बछड़ों के साथ में साधारण बछड़ों और सखाओं के साथ में करते थे। अब खुद ही बछड़े और कृष्ण बनकर ये सब लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो उस दिन हरण करके चले गए और जाकर के अपने ब्रह्मलोक में गए, तो वहां के दरवानों ने कहा आप कौन हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो यहां विराजमान हैं, आप कहां से आए। कृष्ण एक रूप से ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक में चले गए, इस ब्रह्मा को घुसने नहीं दिया, तो ध्यान लगाया अरे ये तो प्रभु ही ब्रह्मा बन करके बैठे हैं। लौटे इतने में एक वर्ष हो गया और कृष्ण अपनी सारी लीलाओं को उसी तरह से कर रहे हैं, सखाओं के साथ प्रतिदिन जाते हैं आते हैं। अब एक दिन बच गया, बलदेव जी ने देखा आज गायें ऊपर में चर रही हैं, गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चर रही हैं, और उनके बछड़े कृष्ण और सखा लोग मधुबन में, नीचे मधुबन में गायें चरा रहे हैं। उन गैयाओं ने कृष्ण की बंसी सुनी, उधर में ध्यान दिया, देखा जो उनके बछड़े वहीं में, और जो बूढ़ा बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो बछड़े चरा रहे थे, गायें चरा रहे थे, उन गायों ने भी देखा कृष्ण बंसुरी बजा रहा है और बछड़े गायें भाग रही हैं दौड़ करके अपने बछड़ों से मिलने के लिए। इन लोगों को कुछ क्रोध सा हुआ, क्रोध होने पर राजा जाएंगे तो अच्छी तरह से देंगे अपने अपने बच्चों को, ये किस प्रकार से ये गड़बड़ कर देते हैं, गायों को चरने नहीं दे, गायें आकर के अपने बछड़ों को दूध पिलाने लगे। ये बछड़े कौन है, एक बरस के नए नए बछड़े उनके साथ में गोवर्धन में हैं, अपने नए बच्चों को दूध ना पिला करके कृष्ण को पिला रहे हैं। बलदेव जी ने मार्ग किया और देखा जो ग्वाले ग्वाल ग्वाल लोग जो ऊपर में गैयां चरा रहे थे, बड़े क्रोध से नीचे उतरे और अपने बच्चों को डांटेंगे फटकारेंगे कृष्ण को। वहां से आए तो उनका क्रोध ही दूर हो गया और बच्चों को हृदय में लगा करके आंखों से आंसू आ गए और उनका आलिंगन करने गए, मुख चुंबन कर। बलदेव जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात, अभी आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा था, नए बछड़ों को छोड़कर के पुराने बछड़े एक वर्ष के उनको दूध पिला रही है क्यों, और गोप लोग अपने बच्चों को छोड़ करके और यहां आकर के इन बच्चों को अधिक स्नेह कर रहे हैं अपने बच्चों से। मैया भी पहले ब्रज की मैयाएं कृष्ण को पहले प्यार करके दुलार करके खिला करके अपने बच्चों को खिलाती और प्यार करती थी, आज क्या देखा बराबर बात क्या हुई, अब कृष्ण बन गए हैं स्वयं बछड़े और कृष्ण बन गए हैं स्वयं सखा बन गए हैं। कृष्ण के प्रति प्राणी मात्र का आकर्षण होना चाहिए, उन गोपियों का भी कृष्ण के प्रति अधिक प्यार है, गैयाओं का भी अपने बच्चों पर प्यार है किंतु उससे अधिक कृष्ण पर है। अब इस समय कृष्ण ही उनके बछड़े बने हुए हैं इसलिए अपने बछड़ों को छोड़ दिया और इन बछड़ों को पुराने बछड़े जो कृष्ण बने हुए हैं उनको दूध पिलाने लगे। और मैया भी क्या कर रही है, नए बच्चे उत्पन्न हुए हैं किंतु कृष्ण पर उनका अधिक स्नेह है क्योंकि कृष्ण ही बने हुए हैं, अब कृष्ण पर और अपने बच्चों पर दोनों में बराबर प्यार आ गया, प्रेम आ रहा समझ में, दोनों में प्रेम बराबर हुआ क्योंकि उनके बेटे भी कृष्ण हैं और कृष्ण तो स्वयं कृष्ण ही है। इस तरह से बलदेव ने विचार किया, ध्यान लगाया, देखा तो ये जितने सखा और बछड़े हैं ये तो सब क्या हैं, ये तो कृष्ण ही बने हुए हैं। कृष्ण से बोले ये क्या माया, ये तो असुरों की माया नहीं हो सकती, महामाया हो नहीं सकती, भूत पिशाच या राक्षस की माया नहीं हो सकती, ये मालूम होता है कृष्ण की अपनी जोग माया है, इसलिए हमको भुला दिया ये एक बरस तक। कृष्ण से पूछा क्या बात है तो कृष्ण हंसने लगे, बलदेव जी पूरे रूप से जान गए। आई इतने में ब्रह्मा जी ने देखा सब बछड़े कृष्ण हैं, सब ग्वाल बाल भी कृष्ण हैं, और फिर देखा जी आपने कंदरे में जो बंद किया है वो वहां पर वहीं पर मूर्छित हुए पड़े हुए हैं और बछड़े भी मूर्छित हुए पड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी चकरा गए, दो चार आंखों से सामने देखने लगे, चार आंखों से पीछे, शायद जब मैं उधर देखता हूं तो कृष्ण उधर में इनको ले जाता है और जब इधर देखता हूं तो कृष्ण उनको भी यही पर ला देता है, उनके दिमाग में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद देखा जी सारे चतुर्भुज हो गए बछड़े और सखा, जब ऐसा देखा फिर देखते हैं क्या, जब फिर बछड़े और गायें जैसे थे वैसे और कृष्ण वैसे गोचारण कर रहे हैं हाथ में ये, तब स्तव स्तुति करने लगे। उसमें दो चार श्लोक बतलाएं तो तीर्थ महाराज स्तव के जो मुख्य हैं संक्षेप में। आज वो नहीं आया दामोदर महाराज, कल सही खराब
चरणों
एक दूसरों में
पूरा हो गया वे जाने, परंतु मैं मात्र पानी और शरीर के द्वारा आज तक आपके तत्व को मैं समझ नहीं सकता। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा पुनः पुनः प्रणाम स्वीकार हो। आप स्वच्छंद बिहारी शिक्षा पूर्वक आप लीला विलास करें, आपकी लीला में मैं बाधक नहीं बनू। इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद को
छड़े। उनका मतलब ये प्रधान नहीं था, प्रधान कुछ और था। गोपियां तरह तरह से तपस्या कर रही थी, नित्य सिद्धा गोपियां नहीं, साधनचरी, ऋषिचरी, देवी, दंडकारण्यवासी, ये जो गोपी बने हैं कृष्ण की रास में प्रवेश करने के लिए, उनके साथ में उनकी सेवा करने के लिए, उनकी उम्र 12 से करीब अधिक हो गई है, कृष्ण से मिलना चाहती है। और जिसमें ब्रह्मा जी ने गौ बछड़ों का हरण किया सखाओं का, उसमें कृष्ण स्वयं जो कृष्ण बन गए, सभी जितने सखा थे, तो वो कृष्ण है। उसी समय में दर्दाचार्य जी ने भविष्यवाणी की, इस वर्ष का युग बड़ा अच्छा है, अभी एक वर्ष, इस एक वर्ष में जो अपनी लड़की की शादी दे देगा ब्रज में, उनकी लड़कियां बड़ी खुशी से रहेंगी। वो सौभाग्यवान बनेगी, सौभाग्यवती होगी, उसका पति उसको प्यार करेगा। जब गर्गाचार्य जी ने किया ऐसा ऐलान, तो सब गोपों ने अपनी अपनी लड़कियों की शादी सब सखाओं के साथ में कर दी, किंतु किसके साथ में शादी, किसके साथ में हुई, वो तो कृष्ण बने हुए हैं, इसलिए कृष्ण के साथ में उनकी शादी हो गई। इसलिए ब्रजगोपियों की किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं हुई, वो जो शादी दिखलाया गया है राधा जी के साथ में, अभिमन्यु इत्यादि की, ऐसी जो ललिता के साथ में और वो माया के जोग माया के द्वारा शादी नहीं होने पर भी शादी साफ दिखलाया है, ये शादी बल्कि सच्चे रूप में हुई। तो जिस सखा के साथ में हुई वो कृष्ण बने हुए हैं, इसलिए सब गोपियों की शादी कृष्ण के साथ में हो गई। इस तथ्य को बतलाने के लिए, इसलिए ब्रज में कोई पारकीय नहीं है, जब विचार किया जाए तत्व से लीला विलास के लिए ऐसा मालूम पड़ता है ये कृष्ण पर पुरुष हैं और इनकी स्त्रियां परदार हैं, ऐसा नहीं। कृष्ण जीव मात्र के पति हैं, उनके प्राण बल्लब हैं, इस चीज को समझना चाहिए। ऐसी उपासना दिखती है, ये गोपाल मंत्र या कृष्ण मंत्र जो है काम गायत्री इत्यादि में ऐसा ही देखा जाता है, समस्त प्राणियों के वो प्राण बल्लभ हैं, इसी रूप में उपासना करनी चाहिए। इसलिए दंडकारण्यवासी पुरुष थे किंतु स्त्री रूप में उनकी गोपी भाव प्राप्त और शरीर प्राप्त हुआ और कृष्ण को इस रूप में पाए। इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको साधारण लोग नहीं जानते। हमारे सर्वज्ञ टीकाकार सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ने अपने टीकाओं में इसको वर्णन किया है। कृष्ण जी द्वादशी के दिन वरुण के दूत उनको पकड़ ले गए, तो वरुण का मान भंजन किया, कभी इंद्र का मान भंजन किया, जो मैं ही सब सृष्टि करने वाला, रक्षा करने वाला, पानी देने वाला देवता मैं ही हूं। ऐसे शंकर जी को मोह हो गया कृष्ण में, सभी देवताओं को मोह हुआ, कृष्ण ने उसे दूर किया। कामदेव ने सबको नचा दिया, ऐसा कोई प्राणी मात्र नहीं है जिसको कामदेव नचा न दे, किंतु कृष्ण से हार गए, उनकी रासलीला क्या है कामदेव को भी परास्त करने की। ऐसा अनुकूल वातावरण, पूर्ण चांदनी, बेली चमेली, जूही और सब तरह तरह के फूल खिले हैं, उसका सुगंध आ रहा है, लाखों लाखों गोपियां 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक बड़ी सुंदरी, लक्ष्मी जी से भी सुंदरी, रूपवती गुणवती, वो सब एकांत वन में आई, जमुना का किनारा, बंसी भट्ट, कोई दूसरा नहीं। उस समय कृष्ण ने कहा जी अपने घर में लड़ जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, यदि कामी पुरुष कृष्ण होते तो क्या होता, कामदेव उनको नचा देते, किंतु कृष्ण उनको आए हुए इस दशा में देख करके ले भी काम की वो प्रार्थना गोपियां कर रही हैं, हमारे साथ में रास इत्यादि करो, और कृष्ण जाओ अपने पतियों के पास में जाओ। पति यदि अंधा, लूला, लंगड़ा, निर्धन, अयोग्य होने पर भी विवाह हो जाने के बाद में पति छोड़ने योग्य नहीं है। हमारे देश में भारतीय संस्कृति में सीता जी को राम ने छोड़ दिया, किंतु सीता जी ने राम को छोड़ा, ये देखो सीता जी ने राम को नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसी अरुंधति इत्यादि का नाम सुनते हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी, अत्रि की अनसुईया इत्यादि की बातें सुनते हैं। इसलिए स्त्रियों को वैसा आचरण भारतीय संस्कृति के अनुसार में करना चाहिए। पति अयोग्य होने पर भी उसको छोड़ना मना है, उसे पाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है स्त्रियों को, अस्वर्गम आकृति कर। कृष्ण ने उनको समझाया जाओ अपने पतियों, हमको, मैं परब्रह्म हूं, हमको देखा, जाओ घर में लौट जा, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा, और इससे लोक में परलोक में सब जगह निंदा हो। जो स्त्रियां किसी कारण के लिए कोई कारण नहीं अपने पति को छोड़ देती हैं, वो कैसी हैं? वो स्त्रियां नहीं हैं, उनको स्त्री नहीं बतलाया गया, उनको दान में ही बतलाया गया, पाप योनि बतलाया गया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पाश्चात्य की संस्कृति हमारे यहां नहीं आए। पति लंगड़ा लूला निर्धन जैसा भी है, उसकी सेवा करने से सूर्य की गति को भी पतिव्रताओं में रूप देने की गति होती है। इसलिए इसको यदि कुछ किया भी है, पतियों से क्षमा मांग करके ये करें। ये एक तरफा पुरुषों की तरफ से दलील नहीं दे रहा, भगवान जैसा कहते हैं वैसा कहते हैं। स्त्रियों में कोमलता नामक एक ऐसी चीज है जो कि पुरुषों में नहीं होता। इसलिए कृष्ण की कृपा सबसे अधिक किस पर हुई? किस पर? पुरुषों पर हुई न स्त्रियों पर हुई? गोपियों की हुई। किसी से भी कृष्ण ने नहीं कहा न पारे हम निर्वध संजुना, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारे इस त्याग के बदले जो सबको छोड़ दिया हमारे लिए मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुना। कोटि जन्मों में देवताओं की लंबी आयु पा करके भी ऋण नहीं। इस प्रकार से कृष्ण की शिक्षाओं में बहुत शिक्षा है जिसको पुरुष लोग भी ग्रहण करेंगे, महिलाएं भी ग्रहण करेंगे। तो ये काम विजय की लीला है। ऐसे ही सब देवताओं को उन्होंने परास्त किया, शिव को भी उनको मोहिनी लीला देख करके वो मोहित होकर के काम के पीछे पीछे दौड़े। इसलिए कृष्ण ने सबको परास्त किया, उनका मद दूर किया और उनको बतलाया कि मैं ही कृष्ण एकमात्र जगत का उपासक हूं। इंद्र को भी ऐसे ही मोह हो गया। इसके संबंध में श्रीमान माधव महाराज जी आपके सामने संक्षेप में बतलाएंगे।
याद है तो नहीं तो रस को कहूंगा ये रस रस की वर्षा है।
तुम ही बोलते पार ले भाल।
अगर वर्णी सभा देखने के लिए आई हो, वर्णी सभा भी देख लिया, आप लौट जाओ। तो कैसे है खुद वंशी पादव करके हम लोगों को बुलाया और कह रहे हैं कि लौट जाओ। गोपियां भी तो कम नहीं है, गोपियां कृष्ण की स्वरूप शक्ति राधिका के आयु स्वरूप है और राधिका की भी पर थी। तुम लोगों ने बताया, आपने क्यों बताया कि पति लुले लंगे अंधे कुछ भी हो सेवा करनी चाहिए। और उसकी बात है, हम लोगों ने जो मैं इसे सुना पूर्णमासी देवी से, आपने कहीं बताया प्रथमं तु गुरु पूज्य ततस्तैव ममाचन तदिसा भगवन भक्ति यत्तथा स्फलो भवे। आपने बताया सबसे पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। आप इतने सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, आप तो हमारे गुरु हैं, पहले तो हमें पूजा करने दीजिए। अगर आप ये पूजा स्वीकार नहीं करेंगे आपको दोष लगेगा, क्योंकि हम पूर्णिमा से भी सुन चुकी हैं, आपने गीता में बताया कहीं कभी ये यथावान प्रपत्ते तदैव भजाम्यहम्। ये जैसे मेरा पूजा करते हैं या करती हैं मैं उनको उसी प्रकार पूजा करता हूँ, इसलिए हमारी पूजा आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, अभी तो सब प्राण पति है, आपको छोड़ करके और कौन पति होगा? ऐसे गोपियां उनको आर्गुमेंट से परास्त कर दिया, कृष्ण कुछ बोल नहीं सके। रास शुरू हुआ, रास में सब गोपियां भी है, श्रीमती राधिका दीदी है, कृष्ण इतने सुंदर नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण को अगर बताया विष्णु, विष्णु क्यों समस्त गोपियों में व्याप्त हो गए,
मैंने इंद्र प्रसंग कहा था बोलने के। बोले छिलाम ना लो जो कुछ बोलता है बोल, इंद्र वाला अच्छा था।
कैसे भगवान एक एक करके गर्भ चूर्ण पर, जैसे कामदेव का गर्भ चूर्ण किया, देवताओं के राजा जो इंद्र थे उनके मन में कुछ अहंकार था, हो मैं तो स्वर्ग की स्वर्ग का राजा हूं। उसने सोचा कृष्ण को देख करके, ये क्या भगवान है क्या नौका के छोकर है, ये ऐसे से काम करते हैं इसे तो लगता नहीं कि भगवान है। लेकिन हुआ क्या, माँ यशोदा सुबह से उठ करके पूरी पकवान से बना रही थी, घी में जब पकवान अल्प बना छोट छोट शब्द हो रहा था, कृष्ण आकर के बताया, मैया आज क्या बना रही है सुबह से उठ करके, क्या मेरा जन्मदिन है? मैया कुछ बोली नहीं, क्या गांधर्य का जन्मदिन है, ज्यादा फैला रूप में समय नहीं है। इसका मन खराब हो गया, माया तो मुझे कभी डांटती नहीं, आज क्यों डांटने बात क्या है, क्या मन तो खराब हुआ। मन में थोड़ा मलाल लेकर के नंद बाबा के पास गए, जाके बाबा की गद्दी में बैठ करके फिर पकड़ के मेरे बाबा आज मैया क्या बना रही है, क्या आज मेरा जन्मदिन है, क्या गांधी का जन्मदिन है? बाबा नहीं क्यों तो मैया क्यों इतना सब बना रही है? कहाँ रहते हैं क्या करते हैं? नंदवाले बोला, देखो बेटा इंद्र है समस्त देवताओं के राजा है। अच्छा वो राजा है, हाँ क्या करते हैं? ये पानी बरसाते हैं, ये पानी बरसने के कारण अगर घास उगता है, पानी भरा होता है, गैया घास खाती है, पानी पीती है, दूध देती है, इससे हमारा गुजारा होता है। अच्छा नहीं बाबा, ये तो मैं ठीक नहीं मान सकता, हमारे इष्ट तो गिरिराज गोवर्धन है, ये उनसे गिरिराज गोवर्धन है, उसकी वजह से जब आकाश में बादल छा जाता है, गिरिराज आकर्षण करके पानी बरसाता है, तो इंद्र की पूजा के बजाय गिरिराज की पूजा करने पर हमारा सब तरह से कल्याण है, राधिया में रक्षा करते हैं, घास उगाते हैं, पानी देते हैं। अच्छा आप बताइए, आपके इंद्र पूजा के बारे में कह रहे हैं, आपने कभी इंद्र को देखा?
नहीं बाबा।
कभी आपके गौर दिया करके? नहीं। तो जिसको कभी देखा ही नहीं तो कैसे पूजा करेंगे? क्रीड़ा के साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं, ये घास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये भरपूर दे रहे हैं, और हम लोग जब गोचारण में जाते उसमें कोई धातुएं भी हैं, इससे बढ़कर तो क्या होगा? ऐसी कृष्ण युक्ति दिखाई विज्ञान भी यही करते हैं साइंस। बड़े बड़े पर्वत हो या पीछ हो, फिर आकर्षण का तो ही कर जाता है, पानी व्यवस्था है। ठीक है, ऐलान कर दिया, आज हम लोग श्रीराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। जितने ब्रजवासी जो बनाया था सबको लेकर के गोवर्धन तालाब पर पहुंच गए। पहुंच करके अब सब जो जो पूरी पकवान की जो था सब कुछ श्रीराज जी को आलोगा, यही पिता जी का आलोगा। कृष्ण ने क्या किया? उनको अर्पण किया। तो कृष्ण के जो बच्चे रूप में खड़े हैं नंद बाबा के साथ, दशरथ मैया के साथ, और दूसरे रूप में जो हरिदेव है गोवर्धन में, हरिदेव के रूप में प्रकट हो गए। करे आलो रे आलो रे आलो रे, और ले आओ और ले आओ और ले आओ, जो जहां चौपो करे उसको दोनों हाथ से खाने लगे। ब्रजवासी ने कहा, अहो हम तो गरीब ब्रजवासी है, आपको हम तो पेट नहीं भर सकते, आप अपने आप संतुष्ट हो जाइए। गोवर्धन ने बताया, तृप्तोस्मी तृप्तोस्मी, सब तृप्त हो गया, तृप्त हो गए। और जैसे कहा सब पूरा कभी भरा हुआ है, सब लोगों ने प्रसाद पाया। अक्सर सब वीरा की परिक्रमा करने के लिए, मतलब वीरा की परिक्रमा की, कोई तो इस वजह से छोटे छोटे बच्चे चक्रों में बैठ करके खाते पीते सब परिक्रमा कर रहे थे। इतने में ये सब आदित्य के पास पहुंच गया। देखो अब ब्रजवासी आपका पूजा बंद करके क्या कर रहे हैं? ये नंदक जो लाला के कहने पर ये पत्थर का पूज रहा है। अच्छा यही बात है, ठीक है, मैं सबको बजाचा करता हूँ। इंद्र और गैरा आपस में चल करके देखा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको रहा नहीं गया, वो भूल गए कि कृष्ण सिर्फ भगवान है। सोचा कि ये सतल नरबालक है। संवर्त में वो बुलाया और मूसलाधार पानी शुरू हो, पानी शुरू हो गया। इतनी तेज बारिश, कहीं से कोई निकल जाना संभव नहीं है, जैसे बारिश हवा की चलने लगी। ब्रजवासी लोग क्या करें, त्राही त्राही सब कृष्ण के पास आके कहा, देखो तुम्हारे कारण हम इंद्र पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा की, और गिरिराज की पूजा करने के कारण आज हमारी ये दशा है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम गिरिराज जी से प्रार्थना करें, हमारी रक्षा करेंगे। सो अपने गोधन को लेकर के वृंदावन पर आ जाए। सब लोग नहीं किया, समस्त गोधन को लेकर के गिरिराज जी तालाब पर आ गए। किसने क्या किया? गिरिराज जी को आसानी से अपने पाए हाथ के अंगुली पर उठा लिया। और सफल सोचे, अहो ये कृष्ण कैसे उठा सकते हैं, अकेला हम ही लाठिया से इसको सहारा दे दे। और गोपियां क्या कर रही है? गोपियां अपने हाथ से इशारा से कह रहे, गिरिराज जी तुम गिरो के पीछे आओगे तो चढ़ना शुरू कर देंगी। गोपियां अपने हाथ के इशारा से सफल को अपने दंड से ये सहारा दे रहे हैं। तो रूप सही बात अपने मुख्यता सूत्र में बताया। सखा लोग कहते, हो कृष्ण देखो तुम बहुत देर से कृपा कर रहे हो, तुम थक गए हो, एक काम करो थोड़ी देर के लिए श्री राम को दे दो, तुम्हारा हाथ हम खराब होते थे फिर तुम ले लेना। कृष्ण समय में बराबर का टक्कर था, इसलिए कहते श्री राम इसको धारण कर सकते हैं। और प्रश्न है, कृष्ण ये लीला क्यों की और पाए हाथ में क्यों उठाया? बाएं हाथ में भी सबसे छोटी उंगली उसमें क्यों उठाया? इस समय तो बड़े अधिक लग रहे हो, क्योंकि इस सब कृपा में इस सब उंगली सबसे अधिक है, इसमें क्यों उठाया? पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि हम लोग के स्वयं से सुना जाके मिले, गुरुजन की डर, समाज का डर, ये सब के कारण गोपियां कृष्ण के सामने नहीं आ सकती है। जब गोपियों की इच्छा है और कृष्ण को भी यही इच्छा है कि हम गोपियों से मिले, जब कृष्ण की इच्छा हुई क्या हुआ, जो मैं इच्छा को पूरा कर देती है, जो माया देवी ने ही इंद्र को अतिक्रम कर दिया, कर्ण से बलि बरसाया, तो कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, सब ब्रजवासी सब एक साथ जुट गए, गोपियां भी कृष्ण के सामने है, कृष्ण भी उनके सामने है। विपद के कारण कोई कुछ सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कृष्ण रूप में फिरी है या लोग दोनों आपस में मिलना चाहते हैं। कभी कभी तो कृष्ण गोपियों को देख करके, विशेषकर राधाजी को देख करके उनका हाथ पांव फूटता था, मतलब बोलते ये क्या कर रहे हो, पिता जी मतलब सब है इसका संभाल लेते। ये जब गोपियों की कृष्ण दोनों की इच्छा हुई आपस में मिलने के लिए तब ये लीला हुई। और दूसरी कारण जो दूसरी प्रश्न है, कृष्ण माया हाथ से क्या उठाया था, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, राधा जी शक्ति तत्व है, राधा जी कृष्ण के बाएं रहती है, इसलिए कृष्ण दाएं हाथ से उठा करके बाएं हाथ में उठाया, बाएं हाथ में भी ये सबसे दाहिना है, ये सबसे बाएं है, बाएं से बाएं को श्रीमती राधिका जी, तो राधिका जी ने ही विराज को उठाया। तब कृष्ण की शक्ति ना रहे कैसे उठाएगा, शक्ति कौन है, श्रीमती राधिकारानी श्रीमती राधारानी ने विराज को उठाया, इसलिए बाएं हाथ में भी कांडवों से उठाया। और उधर हुआ क्या, जो शंकर जी शिव जी वो ये देख करके भगवान के चक्र से प्रार्थना किया, हे प्रभु ये ब्रजवासी का प्राणी पानी भी बचा कर कुछ ना हो, ये प्रार्थना किया, चक्र ही पूरा आकाश में छा गया भगवान के चक्र, और नीचे न तो पानी आ रहा है न तो बच्चा का कुछ भी नहीं हो रहा है, चक्र तो बस अटक गया। इधर जो शिव जी यहाँ पर रह के प्रार्थना किया, उसका नाम चक्रेश्वर, ये शिव जी का नाम हो गया चक्रेश्वर महादेव, जिन महादेव के चक्र ही इस स्थल है उनका नाम चक्रेश्वर महादेव। सातवीं पर ऐसे बारी बरसाया इंद्र ने, सातवीं पर सोचा अब तो ब्रजवासी एक भी जीवित नहीं होंगे, इंद्र खुद आए देखने के लिए, देखे तो सही कोई है, पहले ब्रह्मचर्य को भेजा, आके कहा हे महाराज ब्रजवासी तो आनंद काफी रहे मौज कर रहे हैं, एक पेड़ के पत्ता भी नहीं गिरा। अच्छा इंद्र को जाकर के देखा कुछ भी नहीं गिरा, बात हो गई क्या बात है, तो उनको पता लगा कि साधारण ये जसोदा के राम नहीं है, सिर्फ भगवान है, अब क्षमा मांगे तो कैसे मांगे, खुद जाओ तो क्षमा तो नहीं करेंगे, क्या किया जाए। कृष्ण के कन्या बहुत प्यारा है, इसलिए किसी गो माता को साथ ले जाओ तो कृष्ण क्षमा कर देंगे, इसलिए क्या किया, चले गए सुरभि गाय के पास जाकर बोले हे माता, मैं कुछ भगवान का अपराध किया, आप मुझे मदद करें। सुरभि गाय को मना लिया, सुरभि देवी खुद आई, आकर के इस सुरभि गाय के सामने करके क्षमा मांगने लगे। कन्या को देख करके गो माता को देख करके इस प्रकार हृदय पिघल गया, इंद्र को क्षमा कर दिया। उस समय इंद्र ने क्या किया, आकाश गंगा से पानी लाए, सुरभि माता के दूध सब मिलाकर कृष्ण को अभिषेक किया, जहां पर अभिषेक किया था स्थान का नाम गोविंद कुंड, और कृष्ण का नाम रखा गोविंद, गोविंद का को गो गोपी पे पृथ्वी सब कुछ आनंद प्रदान करते हैं, वो है गोविंद, इसलिए कृष्ण का नाम जब भी गोविंद का नाम इंद्र है, लेकिन इस लीला में इंद्र के द्वारा यह नाम आविष्कार किया गया है, यह है इंद्र मान मर्दन लीला। इसके बाद और कृष्ण पर मधुर मधुर लीलाए हैं, हम लोग गुरु जी इसकी विषय समाप्त करेंगे, हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं पंचांग विभूत। सो ये ऐसे इस लीला के द्वारा लीला जी की महिमा सूचित हुआ, इंद्र का मान मर्दन हुआ, और गोपियां कृष्ण दोनों आमने सामने आए, और आज तक अभी भी गिरिराज का अनुरोध अभी चल रहा है, इसलिए हम सभी मिलकर कहें तो गिरिराज गोवर्धन की जय, अन्नपूर्ण महामहोत्सव की जय, इंद्रमान लीला की जय, गोवर्धनानंद हरि हरि बोल।
बैजनाथ प्रभु विल स्पीक 5 मिनट सम हरि कथा और एनीथिंग।
Especially whole Western civilization is the product of this. That they, in the name of religion, they all think we are American, we are English, we are French, and anyone who doesn't agree with us, we will make a bomb, nuclear bomb, and we will threaten. If they don't agree, we will throw that bomb. We have seen that in the Second World War. How America threw that bomb on Japan. And what is the game? More war, more miscommunication, more misunderstanding. So really, how fortunate those are who are taking birth in India, in Bharat. They can, from the beginning, learn from holy persons, devotees of Krishna particularly. They can hear what is their real world, that we have a relationship with Paramatma, with Krishna, and that relationship is full of happiness, love, and eternal. It will never last. That relationship we can discover again when we hear regularly with faith from the pure Vaishnavas like our Gurudev. And we hear from them how fortunate we can make ourselves by chanting the Mahamantra. We've all heard from Krishnadas Prabhu, from all Vaishnavas, how we can chant, singing, dancing, we can chant in the car at any time, in the evening, in the morning, this mantra. If we receive this mantra from bona fide Gurudev, then our life will be completely fortunate. Gradually, gradually, we will realize what is the real fortune, and then after that, we can help so many others and do real good for the whole world. So I invite you to take this message to heart, hear very carefully from Gurudev, from Vaishnavas, and hear with a desire to follow. Put it into practice, and you will see, guaranteed, the result will be there. Every day you will become more happy. Every day you will feel yourself.